नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय 18। अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। तो श्लोक संख्या 9 से लेकर के 18 तक तात्पर्य नहीं है। तो 19वां श्वेत पट पर लिखा हुआ है, तो उसके पहले 9 से 18 तक हम श्लोक अनुवाद पढ़ेंगे, ठीक है। श्लोक संख्या 9 है। तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्याम वक्ष्यामहे दित्याम यथैव वेततारः। बाद में यानी 8वें स्कंद में ये वर्णन करूंगा, मैं ये वर्णन करूंगा कि किस प्रकार उरुक्रम अर्थात भगवान वामन देव परम साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार तीनों लोगों को अपने पगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों गुणों शक्ति तथा अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूंगा। तो जो कथा प्रसंग है वो हमें समझना चाहिए कि कथा प्रसंग वास्तव में क्या है। वास्तव में तो ये जो है दक्ष की कन्याओं के वंश का वर्णन चल रहा है। आप समझ रहे, दक्ष की कन्याओं के वंश का वर्णन चल रहा है और दक्ष भी ये स्वयंभू दक्ष नहीं है जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, स्वयंभू मनमंत्र में ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ये वो दक्ष नहीं है। दक्ष तो वही है, इनका दूसरा जन्म हुआ है छठवें मनमंत्र में, चाक्षुष मनमंत्र में, प्रचेताओं के पुत्र, तो ये प्राचेतस दक्ष। इन दक्ष के जो है 60 कन्याएं हुई हैं, तो 60 कन्याओं का विवरण दिया जा रहा है कि एक एक कन्या से कौन मतलब हुए। तो इसमें कश्यप मुनि को जो दक्ष की 13 कन्याएं ब्याही गई, 4 कन्याएं और ब्याही गई थी तो उनका पहले वर्णन कर दिया है, और फिर 13 कन्याएं जो उनकी दक्ष की कन्याएं, 13 कन्याएं जो कश्यप मुनि की पत्नियां हैं, तो उनका वर्णन किया जा रहा है। तो उनमें भी जो है जो अदिति हैं, अदिति के 12 पुत्र हुए आदित्य, तो उनका वर्णन कर दिया है एक एक करके। जो सबसे छोटे हैं वो है वामन देव, है ना। तो वामन देव के भी जो है संतानों का वर्णन कर दिया है उन्होंने। कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं वर्णन? सुखदेव गोस्वामी किससे कर रहे हैं? परीक्षित महाराज से, है ना। लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वंश का वर्णन तो कर दिया, लेकिन वामन भगवान के अवतार का जो विस्तृत वर्णन है वो मैं आगे चल करके करूंगा, है ना। अब अदिति के बाद दिति के वंश का वर्णन कर रहे हैं, तो ये भी जो है बहुत पवित्र है। हालांकि दीदी के जितने पुत्र हैं सब दैत्य कराते हैं, असुर हैं, भगवान के विरोधी हैं, लेकिन तो भी ये इस वंश में कौन हुए हैं, बहुत महान भक्त हुए हैं, प्रहलाद और बलि, है ना। तो दैत्यों में ही जो है 12 महाजनों में से 2 महाजन, 12 महाजनों में से 2 महाजन दैत्यों के वंश में ही है, है ना। अथ कश्यप दायादाम दैतेयान कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान प्रहलादो बलिरेव च। अब मैं दिति के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा जो कश्यप जी के द्वारा उत्पन्न किए गए किंतु जो असुर बने। इस असुर वंश में परम भक्त प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज प्रकट हुए। असुरों को दैत्य कहा जाता है क्योंकि वे दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो अब सुनिए बड़े ध्यान से, हालांकि जो है दैत्यों का वंश है तो आप सोचेंगे कि ये तो बेकार के लोग हैं, ये सब भगवान के विरोधी हैं, इनको क्यों सुनाएं, इनको क्यों सुनना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है परिसर महाराज को कह रहे हैं कि सुनो बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें जो है प्रहलाद और बलि जैसे महाभागवत हुए हैं, इसलिए इसको भी सुनना चाहिए। दैतेर्द्वावे वेदायादौ दैत्यदानवो वंदितौ हिरण्यकशिपुर नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ। सर्वप्रथम दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये कौन है? आदि दैत्य है ना, जैसे भगवान को कहा जाए आदि देव, देवताओं के आदि, इसी प्रकार से आदि दैत्य हैं ये, है ना, दैत्यों के यानी दिति के वंश में दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और दैत्यों तथा दानवों द्वारा पूजित थे। हिरण्यकशिपोर भार्याम कयाधुर नाम दानवी जम्भस्य तनिया सातु सुसवे चतुर सुतान संग्रादम प्रागनुरादम राधम प्रहरादमेव च तत्स्वसा सिंहिका नाम राहुम विप्रचितो ग्रही। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नाम से विख्यात थी, वो जम्भ की पुत्री तथा दनु की वंशज थी। दनु कश्यप की एक और पत्नी है दनु, तो उनका पुत्र है जम्भ और जम्भ की पुत्री है कयाधु, उसका विवाह हुआ हिरण्यकशिपु से। उसके एक एक करके चार पुत्र हुए। चार पुत्र किसके हुए? कयाधु के। कयाधु के पति कौन है? हिरण्यकशिपु। चार पुत्र हुए संग्राद अनुलाद हलाद और प्रहलाद। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिंहिका था। उसने विप्रचित नामक असुर से ब्याह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। विप्रचित भी दनु का पुत्र है, तो विप्रचित नामक असुर से ब्याह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। किसने? राहु की माता कौन है? सिंहिका, प्रहलाद की बहन।
शिरोहरण्यस्य हरिश चक्रेण पिबतो अमृतम संग्रादस्य कृतिर्भार्या सूत पंच जन्म ततः।
जब राहु विष बदलकर देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था, ये आठवीं स्कंद में कथा आएगी कि जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे और असुरों को जो है अलग पंक्ति में बिठा दिया था, असुरों को जो है केवल अपनी मुस्कुराहट दिखा रहे थे, है ना, असुर लोग इसमें संतुष्ट थे, अमृत मिले ना मिले इसकी मुस्कुराहट मिल रही, हमको देख रही है, मुस्कुरा करके हमको देख रही है, असुर लोग इस बात में बहुत खुश हो रहे थे। तो और भगवान जो है इस तरह से असुरों को धोखा दे रहे थे, लेकिन राहु बड़ा चालाक था, बोले अरे इस मुस्कुराहट से क्या फायदा, देवता लोग तो अमृत पी रहे हैं, है ना, और मोहिनी ने शर्त बना ली थी कि देखो पुंस्तरी स्त्रियां होती हैं, उनका मन कुछ बस में होता नहीं है, उनका कुछ विश्वास करना नहीं चाहिए, अब अगर आप फिर भी अगर आप स्वीकार करते हो कि मैं जो कुछ भी करूं तो आपको स्वीकार है, आप कोई शिकायत नहीं करोगे तो मैं जो है बांट सकती हूं। असुर बोले हाँ 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 बिल्कुल, हमें कोई शिकायत नहीं है, बस हमारी तरफ हंसती रहो, हमें देख करके हंसती रहो, मुस्कुराहट दिखाते रहो, तो हम जो है तैयार हैं जैसा चाहो, है ना। तो जो है देवताओं को अमृत पिला रहे थे, राहु बड़ा चालाक था, बोले अरे ये तो जो है मूर्ख बना रही है हमको, है तो उसने वो जो है सूर्य चंद्रमा के बीच में वो जो है बैठ करके वो अमृत पीने लगा, है ना। तो क्या हुआ कि भगवान हरि ने उसका सिर काट लिया। सूर्य चंद्रमा दोनों प्रकाश के देवता हैं, तो उन्होंने भगवान को तुरंत बताया कि अरे अरे आप क्या कर रहे हो, ये असुर है। तो भगवान ने जो है उसका सिर काट लिया। तो जो अमृत है वो गले के नीचे उतरा नहीं था, तो जो धड़ था वो तो उसका मर गया, लेकिन जो सिर था वो अमर हो गया। तो वही राहु एक ग्रह बन गया, एक कल्प की आयु उसको प्राप्त हो गई, तो वो जो है राहु है ना। तो राहु जो है प्रहलाद महाराज का कौन लगता है? भांजा लगता है, प्रहलाद जी मामा है उसके। अब संगलाद, अब संगलाद से शुरू कर रहे हैं वंश, संगलाद से वंश शुरू कर रहे हैं। दिति के जो है ये दो पुत्र हुए, दिति के हिरण्यकश्यप के चार पुत्र हुए। अब चार पुत्रों में सबसे पहले संगलाद का वंश वर्ण। संगलाद की पत्नी का नाम कृति था। इन दोनों के संयोग से कृति के पंचजन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हलादस्य धम निर्भार्या
सूत वातापिम इवे वातापिम हरादस्य धम निर्भार्या सूत वातापि मिल्वलम योगस्त्याय त्वधितये पेचे वातापि मिल्वलः।
हलाद की पत्नी का नाम धमनी था। हलाद, अच्छा ठीक है, संगलाद के बाद दूसरा हलाद है ना। हलाद की पत्नी का नाम धमनी था, उसने वातापी तथा इलवल नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। जब अगस्त मुनि इलवल के अतिथि बने तो उसने वातापी को, जो मेढ़े के रूप में था, पकाकर उनका सत्कार किया। बहुत दुष्ट ये इलवल और वातापी, बहुत दुष्ट थे। तो यहां सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आगे इनका वंश हुआ ही नहीं फिर। ये शायद विवाह हुआ या नहीं हुआ, ये दोनों मर गए। अगस्त जी ने इन दोनों को मार डाला है ना। तो ये बहुत दुष्ट थे। वाल्मीकि रामायण में इनकी कथा विस्तार से मिलती है। ये कौन है? वातापी और इलवल है ना। तो ये बहुत दुष्ट थे। तो इनको क्या मृत संजीवनी विद्या पता थी? तो जो वातापी था वो मेढ़ा का रूप धारण कर लेता था, और जो इलवल था उसको काट करके और भोजन में मिला करके और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। और जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हैं तो ये जो है मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित करता था। किसको? वातापी को जीवित करता था इलवल। और वो जो है पेट फाड़ करके, वो ब्राह्मणों का पेट फाड़ करके जीवित हो जाता था, ब्राह्मण मर जाते थे। इतना दुष्ट था। तो अगस्त मुनि को जब पता चला तो बहुत से ब्राह्मणों को आना था भोजन के लिए, और तैयार किया था भोजन। तो अगस्त मुनि पहले से पहुंच गए, बोले अरे भैया मैं बहुत भूखा हूं, मुझे पहले भोजन करा दो। तो वो जो है जो इलवल था वो डांट रहा है कि अभी कैसे भोजन करा दूं, अभी सब ब्राह्मण आएंगे सबके साथ में भोजन कराऊंगा। बोले मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो, मुझे भोजन करा दो। तो अच्छा चलो बैठो। तो ये भोजन कराया अगस्त मुनि को, तो भोजन और दो और दो और दो, सब खा गए। अब जितने भी 100-200 जितने ब्राह्मण रहे होंगे सब भोजन खा गए। अब वो इलवल जो है वो अब सोच रहा है कि अब मैं जो है अपने भाई को जीवित करूं, तो कम से कम एक ब्राह्मण तो मरेगा। अगस्त मुनि को जो है मारने के लिए जीवित किया है ना। अगस्त मुनि ने पेट में हाथ फेरा और पचा लिया उसको। अब वो जो है मृत संजीवनी विद्या से उसको बुला रहा है कि जीवित हो जाओ, जीवित हो जाओ। अगस्त मुनि बोले अब किसको बुला रहा है, पच गया वो, पच गया। अच्छा पच गया तो मैं तुझको खत्म करता हूं। इलवल जो है आक्रमण किया अगस्त मुनि को मारने के लिए, तो अपने तेज से उसको भी भस्म कर दिया, तुम भी भस्म हो जाओ। दोनों को जो है मार डाला अगस्त मुनि ने। तो इस तरह से फिर आगे इनका वंश हुआ ही नहीं है ना। अब तीसरा है अनुराध है ना। अनुराधस्य सुभार्य अनुराधस्य सूर्यायाम भास्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्रहलादिर देव्याम तस्या भवन बलिः। अनुराध की पत्नी सूर्या थी, उसने भास्कल तथा महिष नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। महिष जो है इसका तो नाम सुनते हैं आप, महिषासुर, महिषासुर है ना, जिसने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, है ना, फिर महिषासुर का वध किया, किसने? दुर्गा जी ने, महेश मर्दनी कहलाती हैं, है ना, तो ये महेश है। और बासकल का भी आता होगा, जो भी हो, तो ये जो है अनुराध का वंश वर्णन कर दिया। अब कौन बचे? प्रहलाद, सबसे छोटे सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रहलाद के विरोचन नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी से बलि महाराज ने जन्म ग्रहण किया। बाण ज्येष्ठम पुत्र शतम असनायाम ततो भवन तस्यानुभावम सुश्लोक्यम पश्चादेवाभिधाशते। इसके पश्चात असना की कोख से महाराज बलि को 100 पुत्र प्राप्त हुए। तो असना कौन होगी? बलि महाराज की पत्नी होगी, है ना। 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें बाण ज्येष्ठ था। बाणासुर सबसे बड़ा था बलि महाराज के पुत्रों में से। बलि महाराज का चरित्र अत्यंत प्रशंसनीय है, उनका वर्णन आगे 8वें स्कंद में होगा, है ना। तो वामन देव की कथा और बलि महाराज की कथा, ये दोनों की कथा जो है 8वें स्कंद में आएगी, है ना। तो वामन देव अदिति ये सबसे छोटे पुत्र हैं, है? तो उनके अवतार का वर्णन होगा 8वें स्कंद में, और प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि महाराज का चरित्र उसमें आएगा। बाण आराध्य गिरीशम लेभे तनगण मुख्यताम यत्पार्श्वे भगवान आस्ते यद्यापि पुरे पाल कहा। चूंकि राजा बाण शिव जी का आराधक था, अतः वह शिव जी के सर्वश्रेष्ठ पार्षदों में से एक बन गया। आज भी शिव जी राजा बाण की राजधानी की रक्षा करते हैं और सदैव उसके निकट खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बाणासुर, अब 100 बलि महाराज के जो 100 पुत्र हैं, उनके भी पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, बहुत विस्तृत हो जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अब उसको छोड़ करके अब आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनिए इसको मेरे पीछे दोहराइए। मरुसच्चादिते पुत्र चत्वारिंसन्नवाधिका तासन्न प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मता। मरुतश्चादिते पुत्र चत्वारिंसन्नवाधिका तासन्न प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मता। मरुतश्चादिते पुत्र चत्वारिंसन्नवाधिका तासन्न प्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात्मता। मरुतः मरुद्गण च तथा दिते दिति के पुत्राः पुत्र चत्वारिंशत् 40 नव अधिकाः तथा 9 ते वे आसन थे अप्रजाः निःसंतान सर्वे सभी नीताः लाए गए इंद्रेण इंद्र के द्वारा स आत्मताम देवताओं के पद को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। दिति के गर्भ से 49 मरुत देव उत्पन्न हुए, भी उत्पन्न हुए। इनमें से किसी के संतान नहीं हुई, यद्यपि दिति ने उन्हें जन्मा था, किंतु इंद्र ने उन्हें दिव्य पद प्रदान किया। तो इसको तात्पर्य से पढ़ने से पहले इसको समझेंगे कि अब ये कथा प्रसंग क्या है। आप समझ रहे हैं कि दिति के तो दो ही पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दो पुत्र हुए थे हैं? और उनसे फिर जो हिरण्यकशिपु के पुत्रों का वर्णन कर दिया, उनके पुत्रों का ऐसे वर्णन कर दिया। तो हिरण्याक्ष, अब तो हिरण्याक्ष के वंश का वर्णन करना है। सुखदेव गोस्वामी को तो हिरण्याक्ष के वंश का वर्णन करना है, लेकिन कुछ ऐसी बात छूट गई जो कि सुखदेव गोस्वामी अब उसको बता रहे हैं, है ना। अब वो क्या है कि दिति के 49 पुत्र हुए, जिनका नाम, जिन सभी का नाम पड़ा मरुत। वैसे अलग अलग नाम भी होंगे, अलग नाम तो होने ही चाहिए क्योंकि पहचान के लिए अलग अलग नाम तो होने चाहिए, लेकिन मरुत नाम इनका पड़ा। और ये दैत्य नहीं कहलाए, ये कि बड़े आश्चर्य की बात है कि ये दिति के वंश में ये नहीं माने जाते, ये दैत्य नहीं कहलाते। 49 जो पुत्र हुए ये दैत्य नहीं कहलाए, बल्कि दैत्यों का वंश तो बहुत विस्तृत है, क्योंकि दो दैत्य हुए दिति के, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और उनके वंश में जितने भी हुए सब दैत्य कहलाए। दैत्यों का तो बहुत विस्तृत वंश है, बहुत विस्तृत वंश है दैत्यों का, कोई संख्या नहीं कितने हैं। लेकिन दिति के जो 49 पुत्र हुए ये दैत्य नहीं कहलाए। आश्चर्य की बात है कि नहीं? ये आश्चर्य की बात कि दिति ने ही पैदा किया जिनको, जबकि दिति ने जिनको पैदा किया उनसे पैदा हुए, फिर उनसे पैदा, फिर उनसे पैदा, सब दैत्य कहलाए। और बहुत लंबा ये जो है वंश चलता रहा दिति का, दैत्यों का। लेकिन दिति ने स्वयं पैदा किए 49 पुत्रों को ये दैत्य नहीं कहलाए, ये मरुत कहलाए। और ये जो है फिर देवताओं के मतलब श्रेणी में आ गए, ये दैत्यों की श्रेणी में नहीं है, दैत्यों के वंश में नहीं इनको गिना जाता। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की, असुर भी देवता बना दिए जाते हैं जब उनका सौंदर्य मूलक चरित्र सुधर जाता है। ये सौंदर्य मूलक तो गलत छपा है, अंग्रेजी में लिखा है एथिस्टिक नेचर, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, नास्तिक स्वभाव, है ना, नास्तिक स्वभाव जब सुधर जाए। तो इस विश्व में दो प्रकार के मनुष्य हैं, भगवान विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं और उनके विरोधी असुर कहलाते हैं। इस श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है। यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने। तो अब हम चर्चा करेंगे इस पर। आगे चल करके परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे, आगे चल करके परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे, है ना। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे कि ये कैसे दिति के गर्भ से पैदा हुए और तो भी इनके अंदर आसुरी भाव नहीं पैदा हुआ, इनके अंदर आसुरी भाव नहीं आया और इनके अंदर देवताओं जैसा भाव कैसे आ गया। तो ये मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, ये आप मुझे बताइए। और एक बात और समझिए कि वंश का वर्णन करने के बीच में जो है, जो परीक्षित महाराज कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है। और फिर उस में उसके बीच में जो है जो कथा आती है सुखदेव गोस्वामी, उसका जो वर्णन करते हैं उसका बहुत महत्व है। आप समझ रहे हैं, जैसे कई अध्यायों में जो वृत्रासुर की कथा आई तो वो था क्या, वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का इरादा नहीं था ये वृत्रासुर की कथा सुनाने का, जब कई अध्यायों में जो चलती रही, है ना, इरादा नहीं था कोई उनका, तो जो है इरादा था वंश का वर्णन करने का। तो उस वंश में जो है अदिति के जो 12 पुत्र हुए, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु, उरुक्रम। तो उन्होंने विवस्वान अरेमा पोसा तीन पुत्रों के वंश का वर्णन किया, फिर त्वष्टा जो चौथे पुत्र हैं अदिति के, तो उनके जब वंश का वर्णन किया तो उन्होंने बताया कि विश्वरूप उनके पुत्र हुए और देवताओं ने उनको अपने गुरु का स्थान दिया, क्योंकि बृहस्पति नाराज हो गए थे, बृहस्पति ने देवताओं को त्याग दिया। तो इस बात पर जो है परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या घटना हुई कि बृहस्पति ने देवताओं को त्याग दिया, देवताओं ने क्या कर दिया अपराध बृहस्पति का, तो इस घटना से जो है सुखदेव गोस्वामी ने फिर वो विस्तार से वर्णन किया कि इंद्र ने क्या अपराध किया था बृहस्पति का, और फिर जो है विश्वरूप को जो है देवताओं ने गुरु बनाया और उससे फिर उनको जो है असुरों के ऊपर विजय प्राप्त हुई, और फिर जो है इंद्र ने विश्वरूप के भी तीनों सिर काट दिए, और फिर त्वष्टा ने जो है मृतासुर को उत्पन्न किया इंद्र की हत्या करने के लिए। तो ये जो कथा है ये बीच में आगे जो नहीं होनी थी, ये मृतासुर की कथा, फिर मृतासुर इतने बड़े महान भक्त कैसे बने जबकि असुर योनि में उनका जन्म हुआ था, तो इस पर जो है फिर सुखदेव गोस्वामी उनकी पिछले जन्म की कथा सुनाई, राय चित्रकेतु की कथा सुनाई। तो मतलब ये है कि जो विषय चल रहा था उससे हट करके जो चर्चा होती है वो श्रीमद् भागवत में ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सुन रहे, और उसमें फिर बीच में कई अध्याय निकल गए, बहुत से अध्याय निकल गए। तो इस बात को हमें समझना है कि परीक्षित महाराज जो प्रश्न करते हैं उनका जो है सुखदेव गोस्वामी जब बहुत महत्व समझते हैं, तो वो जो कथा होती है वो भगवान की भक्ति से, भक्तों से संबंधित होती है, भगवान से संबंधित होती है, तो वो उसमें जो है मतलब बहुत विस्तार होता है, फिर जो है बहुत विस्तृत कथा होती है ना। तो यहां पर जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि दिति के जो 49 पुत्र हुए तो ये जो है दैत्यों के वंश में नहीं गिने जाते हैं, तो एक ही आश्चर्य। अब एक प्रश्न ये उठता है कि दिति के अंदर क्या ऐसा दोष है कि दिति के वंश में जो पैदा हुए वो सब असुर होंगे, दिति अदिति ये सब तो दक्षिण की पुत्रियां हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि अदिति के जो पुत्र हैं वो सब देवता होंगे तो वो तो विष्णु के भक्त होंगे, अदिति के जो पुत्र होंगे वो सब असुर होंगे, ऐसा क्या दिति में कुछ ऐसा दोष है क्या? वास्तव में दिति का जो है एक दोष बन गया था, एक घटना के कारण जो दोष बन गया था जिससे कि फिर वो जो है वो फिर वो बहुत लंबा जो है सिलसिला हो गया दोषों का, है ना। तो वो क्या था, हिरण्यकश्यप और हिरण्यांश का जो जन्म हुआ था दिति के द्वारा, तो उसमें हुआ क्या था कि कश्यप मुनि को उसने जो है दिति ने आग्रह किया था, है? और वो समय जो है वो उचित नहीं था संतान उत्पन्न करने के लिए, लेकिन दिति ने विशेष आग्रह किया था कश्यप मुनि से, तो कश्यप मुनि ने भगवान की इच्छा समझ करके दिति को गर्भाधान कर दिया, है? लेकिन फिर कश्यप मुनि ने जो है मतलब बताया कि अब तो तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र होंगे ये दो पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होंगे, पूरे विश्व को जो है ये भय में डालेंगे, बहुत ही भयानक दो असुर होंगे। तो दिति के द्वारा एक जो गलती हो गई कुछ समय के लिए, तो वो गलती समझो कि वो गलती फिर जो है मतलब फिर वो आगे उनके वंश में चलती ही रही, आप सुन रहे हैं कि हिरण्यकश्यप के जो पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए, फिर हिरण्याक्ष के पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए, और इतना बड़ा विस्तृत दैत्यों का वंश मतलब जो हुआ तो सब में आसुरी भाव है ना ये हुआ। लेकिन दिति से जो है ये 49 जो पुत्र पैदा हुए तो इनके अंदर आसुरी भाव नहीं, इनके अंदर आसुरी भाव नहीं हुआ, है ना। इसका कारण क्या है, तो ये परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि दिति ने कैसी स्थिति में इनको जन्म दिया कि ये लोग जो है मतलब देवता बन गए। तो ये जो विषय है बहुत ही रोचक है, इसलिए परिचय महाराज ने प्रश्न किए, दो श्लोकों में प्रश्न किया इस विषय में, और सुखदेव गोस्वामी ने फिर इस कथा को, मृतों की जो कथा है वो बहुत लंबी पूरे अध्याय पर्यंत उन्होंने जो है ये सुनाई ना। ये जो है बहुत ही रोचक कथा है। तो वास्तव में हुआ क्या था, वास्तव में हुआ क्या था, वो तो कथा तो आगे आएगी है ना, लेकिन हुआ क्या था कि दिति के मन में तो ईर्ष्या ही पैदा हुई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जब मृत्यु हो गई तो दिति ने क्या विचार किया, दिति ने क्या विचार किया कि मेरे दो ही पुत्र हुए थे और वो तो भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए, भगवान विष्णु ने मार दिए, तो भगवान से तो ईर्ष्या कर नहीं सकती, उसके पति तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। दिति जो है भगवान से तो ईर्ष्या नहीं कर सकती, लेकिन फिर उसने अपनी ईर्ष्या का जो विषय है वो किसको बनाया, इंद्र को बनाया, इंद्र पुत्र भी है तो अगर उससे ईर्ष्या करे तो कम दोष लगेगा ना, अपने पति से ईर्ष्या नहीं कर सकती, भगवान से ईर्ष्या नहीं कर सकती, वैसे तो भगवान ने मारे है ना, तो इंद्र से उसने ईर्ष्या किया, सौत का लड़का है इंद्र, तो सौत के प्रति ईर्ष्या ये तो स्वाभाविक स्थितियों की होगी है ना। अदिति के जो है 12 पुत्र हुए तो वो जो है खूब फल फूल रहे हैं है? और मेरे दो ही पुत्र हुए और दोनों ही पुत्र जो है भगवान विष्णु ने मार डाले, इन किस कारण से मारे, इंद्र के कारण मारे, इंद्र की रक्षा के लिए मारे है? अब इनके दोनों पुत्र, दिति के दोनों पुत्र कितने बदमाश थे, कितने अपराधी थे, और सबको जो है भय में डाल रहे थे, आतंकित कर रहे थे, बहुत बड़े आतंकवादी थे। तो दिति तो माता होने के कारण विचार नहीं करती ना अपने पुत्रों के दोष को, लेकिन इंद्र का दोष पूरा माना कि इंद्र के कारण मेरे दोनों पुत्र मारे गए भगवान विष्णु के हाथों, तो मुझे एक ऐसा पुत्र पैदा करना है जो इंद्र का वध करे, जो इंद्र का वध करे, मुझे ऐसा पुत्र पैदा करना है ना। तो विचारधारा तो बहुत गलत थी है ना, और कश्यप मुनि की बड़ी सेवा की इस विचार को रख करके कि मुझे अपने पति को प्रसन्न करना इसलिए कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, और कश्यप मुनि उसके विचार को नहीं जानते थे, तो प्रसन्न हो गए, बोलो क्या चाहिए। और जब उसने कहा कि मुझे तो ऐसा पुत्र चाहिए, कश्यप मुनि सोचे अरे ये तो जो है ना इसने मुझको जो है मतलब मूर्ख बना दिया है? और ये तो जो है अपने बहुत बड़े पाप में फंस गया कि मैं उसको ऐसा पुत्र दूं जो इंद्र का वध करे। तो फिर कश्यप मुनि ने भी जो है कुछ कपट की चाल चली, तो उन्होंने कहा कि देखो पुत्र तो होगा लेकिन एक साल तक जो है तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा, बड़ी सावधानी पूर्वक, बहुत और बड़े कठिन नियम दिए, पुण्य समान व्रत का नियम दिया, एक साल तक तुम्हें नियम का पालन करना पड़ेगा, और अगर तुम नियम का पालन कर लोगी तो तुमको वो पुत्र पैदा होगा जो कि इंद्र का वध करेगा, लेकिन अगर तुम्हें कहीं भी तोड़ दिया कुछ नियम तो फिर वो जो है इंद्र के मित्र बन जाएंगे, वो पुत्र जो है इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो दिति बड़े उत्साहपूर्वक एक साल तक जो है बड़े नियमों का पालन किया उसने, और वो वैष्णवों के जो नियम है वो उनका था कि मतलब खाने पीने में भी कितने शुद्धता से है, मतलब खाना पीना है, और विचार भी जो है इतने शुद्ध हैं रखो कि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अब ईर्ष्या के कारण तो उसने जो है पुत्र को पैदा करना था, लेकिन अब जो है ईर्ष्या बिल्कुल निकाल दो, इंद्र के प्रति भी ईर्ष्या निकाल दो, तो अब वो जो है जो संस्कार माता के जो विचार होते हैं वो गर्भ के अंदर बालक के ऊपर सीधे पड़ते हैं, गर्भ संस्कार जिसको बोलते हैं है ना, गर्भाधान संस्कार फिर गर्भ संस्कार। तो माता दिति जो है साल भर तक जिन विचारों का पोषण करती रही, तो वो विचार सब मतलब भगवान की भक्ति से थे, भगवान से संबंधित थे, वैष्णव से संबंधित थे, और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करना, तो वो जो गर्भ के अंदर बालक था उसका संस्कार बनता रहा उसी प्रकार से है ना। और फिर कश्यप मुनि ने जो कहा था कि कोई नियम टूट जाए तो फिर जो है वो बालक जो है इंद्र का शत्रु नहीं होगा, इंद्र का मित्र बन जाएगा, तो कुछ जो है मतलब गलती हो गई कि बिना पैर धोए माता दीदी सो गई, तो वो जो बालक था वो इंद्र का मित्र बन गया। लेकिन इंद्र ने फिर गलती करी, इंद्र ने गलती करी, इंद्र ने ये अवसर जान करके कि इस ऐसे अवसर में बालक की मैं हत्या कर दूं। जब कश्यप मुनि ने कहा था कि वो बालक जो है इंद्र का मित्र बन जाएगा, तो अगर दैत्य का नियम कुछ टूट गया तो इंद्र को तो उसमें प्रसन्न होना चाहिए, अब बच्चे की हत्या करने की क्या जरूरत है। इंद्र ने जो है बच्चे की हत्या करने का प्रयास किया तो उसके 7 टुकड़े कर दिए, गर्भ में दीदी गर्भ में प्रवेश करके छोटा रूप धारण करके और बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए, है ना। लेकिन पुंसवन व्रत की इतनी शक्ति थी, वो भगवान विष्णु की शक्ति थी उस व्रत में, तो वो जो 7 बच्चे थे वो 7 बच्चे बन गए, 7 टुकड़े 7 बच्चे बन गए और वो रोने लगे। अब इंद्र ने सोचा कि ये तो जो बड़ा चक्कर हो गया है, तो एक ही 7 हो गए, 7 रो रहे चिल्ला रहे हैं, माता जाग जाएगी, माता सो रही है वो जाग जाएगी है? तो इंद्र बोलता है मरुत मरुत मरुत, मतलब रोनी 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 है, डांट करके बोला मरुत मरुत, संस्कृत में मरुत मरुत मतलब रोनी रोनी, और 7 टुकड़ों के और 7 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े, 49 बच्चे हो गए और रोए और आवाज हो रही शोर कर रहे हैं, 49 बच्चे हो गए, है ना। और वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमें क्यों मारते हो। तब इंद्र को समझ में आया कि अरे मैंने तो बड़ी भारी गलती कर दी कि मैंने जो है, ये तो हमारे भाई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं नहीं मारूंगा, तुम जो है मेरे भाई हो। तो फिर इंद्र भी गर्भ से बाहर निकले और 49 बच्चे बाहर निकले और दीति भी जागी है? और फिर जब इंद्र ने जो है फिर अपनी गलती बताई कि मेरी ये गलती है, मैंने जो है मतलब आपके गर्भ को नष्ट करना चाहा, लेकिन आपके व्रत का जो है इतना प्रभाव था कि 49 बच्चे हो गए है? और दीति भी जो है बड़ी प्रसन्न हो गई इंद्र की सच्चाई से, और चूंकि पुंसवन व्रत का उसने जो है पालन किया था तो उसका भी मन बड़ा शुद्ध हो गया था, अब इंद्र के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रहा। तो कश्यप मुनि ने कैसे फंसाया दीति को, कश्यप मुनि ने कैसे फंसाया उसको। अब दीति का इरादा बिल्कुल गलत था, है ना, और कश्यप मुनि ने मतलब भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि वो जो है मतलब पापों से बच गए, बहुत बड़े पाप से बच गए कश्यप मुनि, है ना। और दीति का भी जो भाव है वो बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो ये जो 49 जो बालक थे, अब ये जो है यहाँ अपने वंश में दीति के वंश के साथ में रहने योग्य नहीं है ये, क्योंकि ये तो कैसे हो गए हैं, हाँ अब तो इंद्र के जो है इनके इंद्र के पक्ष में हैं ये लोग, तो अब ये ठीक उचित नहीं है कि इनको देवताओं के साथ रखा जाए, है ना। तो दीति ने जो है आज्ञा दे दी और इंद्र जो है इन 49 भाइयों को लेकर के चले गए, है ना। तो यहां पर बताया गया है त आसन न प्रजा सर्वे, ये 49ों के 49 जो है बिना संतान के रहे, बिना संतान के हुए ये मरुदगण, है ना। अभी बिना संतान के रहे इसका क्या कारण है, जो भी हो कारण, ये तो कारण नहीं बताया गया, लेकिन अगर संतान होती तो सुखदेव गोस्वामी के लिए एक बड़ा भार हो जाता कि इनके भी वंश का वर्णन करें तो बिना संतान के रहे हैं। तो ये मरीचिर मरुतामस्मी, गीता में भगवान कहते हैं कि मरुत गणों में मैं मरीचि नाम का मरुत हूं, तो जो श्रेष्ठ है मरीचि नाम के जो मरुत हैं 49ों में श्रेष्ठ हैं। तो ये मरुत जो है नाम पड़ गया इन 49ों का, तो आप लोग समझ गए कि मरुत नाम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ। रो रहे थे इंद्र ने कहा मारुत रो नहीं रो नहीं, तो वही नाम मरुत इस प्रकार से इनका नाम पड़ा, ठीक है ना। तो अब जो है प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिख रहे हैं तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य है, और यहां पर विशेष महत्व यह है कि माता जो है अगर गर्भकाल में जिन विचारों का पोषण करती है तो गर्भ के अंदर जो बालक होता है उस पर सीधा असर पड़ता है उसका, ठीक है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मैं भी गर्भ में था अपनी माता के, तो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सुना तो 12 साल में एक बार बहुत बड़ा यज्ञ होता था, जो वो महोबा शहर है, तो उसमें जो है मतलब बहुत दूर दूर से संत महात्मा लोग आते एकत्रित होते थे और रोज कथा चलती थी, कथा प्रवचन होते थे, तो मेरी माताजी सुनने जाया करती थी। तो 12 साल में एक बार जो है मतलब वो अवसर होता था, तो मेरी माता जो है वो सुनने जाती थी। नरसिंह कुटी वहाँ पर एक मंदिर है नरसिंह भगवान का, उनके सामने बहुत बड़ा एक मैदान है, वहाँ पर जो साधु महात्मा होते थे वो जो है ठहरे होते थे तो उनका जो है प्रवचन होता था। फिर जब 12 साल के बाद जब दोबारा हुआ तो मैं उस समय 12 साल का हो गया था तो फिर मैं भी सुनने जाता था उनके प्रवचन। तो मेरी माता सुनने जाया करती थी तो कुछ वो उसका भी जो है संस्कार मेरे ऊपर आया है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी हैंड माइक नहीं हैंड माइक दे।
तो ये जो आप कथा बता रहे हैं कश्यप मुनि अदिति के जो पहले जो दो पुत्र हुए और उन गलत समय में होने की वजह से उनके दो जो पुत्र हुए वो दोनों राक्षस हुए, तो मैं ये प्रश्न है कि कश्यप मुनि यानी उनको पता था कि गलत समय है अदिति की यानी वाइफ की बात को माना उन्होंने, तो इसका क्या वैलिड रीजन हो सकता है कि कश्यप मुनि ने उनकी बात माना जानते बूझते हुए भी?
हाँ इसमें विस्तार से वर्णन है, तीसरे स्कंध में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन है और प्रभुपाद जी ने भी बहुत विस्तृत तात्पर्य लिखे हैं और कई श्लोकों में ये सब बातें आती हैं। तो कश्यप मुनि चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनकी जो पत्नी है वो उस समय ऐसे समय आग्रह कर रही है और कश्यप मुनि ने उसको अच्छी तरह समझाया कि अभी ये समय जो है मतलब उचित नहीं है और शिव जी तुम्हारे देवर हैं और वो जो है आकाश मार्ग में विचरण करते हैं और वो देख भी रहे हैं, तो ये बड़ी लज्जा की बात है कि मतलब इस समय अगर जो है सहवास करोगी तो ये बड़ी लज्जा की बात है कि वो देख रहे हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी दिति ने जो है उनके वस्त्रों को खींचना शुरू कर दिया, जैसे वेश्या हो कोई वेश्या हो किसी पुरुष के वस्त्र जो है खींचने लगे, अदिति के कश्यप मुनि के वस्त्र खींचना शुरू कर दिया। तब कश्यप मुनि ने जो है अब ये भगवान की इच्छा समझ गए कि भगवान की इच्छा है, क्योंकि तो पूरी भौतिक सृष्टि वास्तव में क्या है कि इसके पीछे भगवान की इच्छा तो है ही है और भगवान की इच्छा के पीछे जीवों की इच्छा है कि जो जीव हैं वो अलग अलग प्रकार से भोगना चाहते हैं तो भगवान जो है उनको अनुमति देते हैं। तो असुरों कुछ जीव जो असुर के रूप में भी पैदा होंगे, उनकी इच्छा है आसुरी कर्म करने की, तो इस भौतिक जगत में सब प्रकार के जो है जीवों की कई अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं तो भगवान अवसर देते हैं। तो कश्यप मुनि ने इस बात को समझ लिया कि अब ये भगवान की इच्छा है, इसमें अपना जो है प्रयास सफल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जो है मतलब दिति को फिर ले गए एकांत में और गर्भाधान किया और फिर दिति जो है फिर बाद में क्षमा मांगने लगी कश्यप मुनि से, तो उन्होंने फिर मतलब कहा कि इसमें जो तुम्हारा दोष है उसका भी ये परिणाम मिलेगा और तुम्हारा गुण भी है, तुम क्षमा मांग रही हो तो उसका भी गुण है, तो इस के प्रभाव से कि तुम क्षमा मांग रही हो तो तुम्हारे पुत्र का एक पुत्र ऐसा होगा जो बहुत बड़ा भक्त भी निकलेगा। तो दिति के इस कार्य में जो दोष हुआ उसका भी दंड मिला, नहीं उसका जो एक बहुत बड़ा गुण ये भी था कि जब उसको महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तो वो क्षमा मांगने के लिए आई, तो ये बहुत बड़ा गुण भी माना जाता है कि अगर आपको महसूस होता है कि हाँ गलती हुई है तो आप क्षमा मांगिए और उस स्थान में जाके क्षमा मांगिए जहाँ आपने गलती की है, तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है। फिर होता यह है कि गलती हो गई जैसी भी हो गई गलती फिर उसके ऊपर तो लीपा पोती ही मतलब लोग करते हैं कि किसी तरह से उसको मिटाया जाए दबाया जाए ढका जाए और वो गलती फिर स्वीकार नहीं करते, लेकिन दिति का बहुत बड़ा गुण था तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो है हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप में जो पैदा हुए वो दिति के इस गुण के कारण हुए पैदा। तो कश्यप मुनि जो है एक ऐसे महात्मा हैं महान पुरुष हैं जो कि समझ भी सकते हैं कि कैसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, वो अगर विवश हैं तो जो है भगवान की इच्छा को समझ करके फिर वो जो है उसी दिशा में फिर वो चले। ठीक है ना
जी। इसी से संबंधित जैसे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि कश्यप मुनि का जो चरित्र है इसमें प्रभुपाद जी अलग अलग पर्पट में अलग अलग बातें कई सारे अलग अलग व्यू पॉइंट से बता रहे हैं, तो एक उसमें बता रहे कि ही इज ऑल्सो विलिंग टू डू, तो इसको कैसे समझ सकते?
हाँ, ये शिक्षा की दृष्टि से प्रभुपाद जी ऐसे भी बताते हैं कि जो पुरुष है उसको जो है मतलब कंट्रोल करना चाहिए, उसको नियंत्रण करना चाहिए अपने अपने ऊपर, और स्त्री को जो है अपने द्वारा नियंत्रित रखना चाहिए, अपने नियंत्रण में रखना चाहिए स्त्री को। तो ये एक शिक्षा की दृष्टि से ये प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो कश्यप मुनि जो है मतलब ऐसी स्थिति में थे कि वो जो है मतलब उन्होंने इसको भी भगवान की इच्छा माना। ठीक है, आपका प्रश्न।
थैंक यू ब्रूस। मुझे आपने बताया था कि जैसे राहु ने अमृत पिया तो उसका सिर्फ सिर बचा और वो अमर हो गया, तो एक मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा थी ब्रूस कि ये देवता अगर अमृत पीते हैं, अमृत भगवान ने पिलाया देता है उनको, बट स्टिल जो देवता हैं वो हमेशा भयभीत रहते हैं।
अच्छा,
नहीं, मृत्यु का डर रहता है।
देखिए, ये जो अमृत है ये इस भौतिक जगत का अमृत है, तो इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए भौतिक शरीर की मृत्यु नहीं होगी। भौतिक शरीर जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, है ना। तो ये अमृत यह है कि शक्तिशाली होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो मरने नहीं देता है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी मरने की संभावना तो आगे चल करके फिर हो ही जाती है। अब इंद्र के हाथ में जो है हथेली में भी जैसे हमारे पसीना निकलता है, ऐसे इंद्र की हथेली में जो पसीना है वो अमृत निकलता है, तो अगर किसी को घाव लगे, चोट लगे, ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अमृत। तो अमृत का प्रभाव तो ये है कि मरे को भी जीवित कर सकता है, तो ऐसा भी मतलब अमृत का प्रभाव है, लेकिन तो भी ये हमेशा के लिए नहीं है कि भी हमेशा के लिए मृत्यु को मतलब रोका जा सके, ऐसा नहीं है।
मरे हुए को जीवित कैसे कर सकता है?
मरे हुए को जीवित कर सकता है अमृत अगर कुछ मतलब अगर अभी तुरंत का मरा हुआ है, लेकिन अगर जीव शरीर को छोड़ चुका है तो फिर वो जीवित नहीं करेगा। अब जैसे वो अमृत जो है गले के नीचे नहीं उतरा था, तो भगवान ने चक्र से सिर काट दिया है, और फिर जो धड़ है, धड़ से जो है अमृत का कोई संयोग नहीं कराया, तो फिर धड़ जो है उसका मरा ही रहा और सिर जो है जीवित रहा उसका। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। हाँ जी, आपका प्रश्न। हिरण्याक्ष की वंश परंपरा में इसमें आएगा, हिरण्याक्ष की वंश परंपरा का वर्णन आएगा। हिरण्याक्ष के 9 पुत्र हुए, उनके नाम और उनके पुत्रों के नाम, तो उसमें काफी वंश, दैत्यों का जो वंश है वो ज्यादा से ज्यादा तो हिरण्याक्ष के द्वारा हुआ। हिरण्यकश्यप के वंश में ज्यादा लोग नहीं है, दैत्य लोग है।
कोई प्रसिद्ध दैत्य है
किसके वंश में?
हिरण्याक्ष के वंश में
हिरण्याक्ष के वंश में बहुत से प्रसिद्ध दैत्य हुए हैं हिरण्याक्ष के वंश में। अब देखना पड़ेगा इसमें, लेकिन नाम काफी नाम आए हैं, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध दैत्य हैं। और कुछ दैत्यों को जो है भगवान कृष्ण ने वध किया, कुछ दैत्यों का वध प्रद्युम्न जी ने किया, कुछ दैत्यों का वध अनिरुद्ध जी ने किया, तो वो सब जो है नाम मतलब आते हैं और वर्णन आता है। गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से कथाएं आती हैं इनके 9 पुत्रों की, और वो जो है मतलब कब किसके द्वारा मारे गए उनका नाम आता है।
प्रोजी, एक और जिज्ञासा थी प्रोजी, जैसे कि ऊपर के लोकों से हमारे लोकों में समय का बहुत अंतर होती है, तो हम देखते सुनते हैं जैसे नरक में जो लोग रहते हैं वो कहीं वर्षों तक, कहीं हजारों हजारों वर्षों तक, कहीं कल्पों तक रहना पड़ता है, तो क्या जो नरकों का समय के हिसाब से पृथ्वी लोग के समय के हिसाब से अंतर होगा या एक ही समय हो सकता है? कुछ
नरक अगर पितृलोक बताया गया, नरक के पास पितृलोक है और पितरों का जो दिन होता है, तो यहाँ के शुक्ल पक्ष की 15 दिनों का उनका दिन होता है और कृष्ण पक्ष की 15 दिनों की उनकी रात होती है, तो इस तरह से 30 का जो है मतलब डिफरेंस रहता है, कि उनके मतलब एक दिन में हमारे 30 दिन होते हैं, उनके एक साल में हमारे 30 साल होते हैं, तो पितरों का है। अब नरक का जो समय है वो कोशिश किस हिसाब से माना जाएगा ये मैं बता नहीं सकता हूं, कि नरक का भी उसी हिसाब से माना जाएगा या पृथ्वी के हिसाब से माना जाएगा, लेकिन पितृलोक तो है, नरक के पास तो है, इतना तो है। ठीक है, और कोई आपका प्रश्न?
जो अभी आपने वंश परंपरा बताई इसमें देखते हैं कि जो धनु है पुत्री कश्यप मुनि की, जो वाइफ उनके बेटे की जो पुत्री का विवाह उनसे हिरण्यकश्यप से, तो प्रभु जी ये रिलेटिव्स यानी आपस में फैमिली मेंबर जिनके फादर है कि उनके आपस में विवाह हो रहा है, तो इसको वैदिक संस्कृति में और उस समय की स्थिति में कैसे और आज के समय से कैसे कंपेयर करके समझा जा सकता
है? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। कश्यप तो एक ही है, कश्यप से ही जो है जो धनु उनकी पत्नी हुई, तो उससे जो दानव हुए, तो धनु वंश में जो हुए तो ये दैत्य वंश में जो मतलब हुए उनका आपस में कैसे विवाह हुआ इस विषय में विचार करना पड़ेगा कि कैसे विवाह हुआ और कहाँ तक उचित है। वैसे तो जहां तक ब्रह्मा जी की बात है तो ब्रह्मा जी के वंश में तो उचित है, क्योंकि ब्रह्मा जी से जैसे दक्ष का जन्म हुआ तो उनके शरीर से दक्ष का जन्म हुआ, और दक्ष की जो पुत्री थी सती तो उनका विवाह हुआ शिव जी के साथ, तो शिव जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो शिव जी का विवाह दक्ष की पुत्री से हुआ, दक्ष तो छोटे भाई हैं शिव जी के, तो उसका तो उत्तर हमने मतलब सोचा इस प्रकार से सोचा कि ब्रह्मा जी ने जो पैदा किए अपने शरीर से ही पैदा किए, कोई उनकी तो पत्नी थी नहीं, उन्होंने किसी पत्नी से पैदा नहीं किए, तो अपने शरीर से ही पैदा किए, तो इस कारण से जो है ये विवाह मतलब किया जा सकता है इस तरह का। लेकिन यहां पर मतलब कैसे इसका एक कारण ये समझ में आता है कि जब सृष्टि को बढ़ाने की आवश्यकता थी, जब सृष्टि को बढ़ाने की आवश्यकता थी तो इसका मतलब कि ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, तो ये समझ में आता है कि अगर ज्यादा जनसंख्या ना हो तो फिर विवाह के लिए फिर इतने नियम नहीं मतलब फिर बनते, ठीक है ना, क्योंकि उस समय जो कार्य था वो जनसंख्या को बढ़ाने का कार्य था कि सृष्टि को भरना है, तो यही समझ में आता है कि सृष्टि को भरने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर कुछ दूर के रिश्तों में जो है फिर वो संबंध बनाए जा सकते हैं। ठीक है,
जैसे भगवान के कृष्ण बुक में भी हम पढ़ते हैं कि सुभद्रा देवी जो कि मामा जी की लड़की अर्जुन की, उनसे विवाह हुआ।
हाँ, ये विवाह जो है ये यादवों में ये विवाह है ये होता है इस प्रकार का कि मामा की लड़की के साथ भी विवाह किया जाता है और बुआ की लड़की के साथ भी विवाह किया जाता है। तो अर्जुन की जो है वो बुआ की लड़की है सुभद्रा, सुभद्रा से वही, और कृष्ण की जो है मामा की लड़कियां, मामा ने कृष्ण ने जो है 3 जो है अपने मामा की पुत्रियों से विवाह किया है ना, मित्रविंदा भी उनकी मामा की लड़की थी, भद्रा भी उनकी मामा की लड़की थी, इस तरह से। तो यादों में ऐसा विवाह है इस प्रकार का होता है, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो ये उचित नहीं है, लेकिन यादों में होता है ऐसा विवाह है ये जो है मतलब बताया गया है, ये तो वंश में होता है ऐसा।
ये वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड है या फिर कैसे?
अब इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि ये क्या कारण है कि यादों में ऐसा विवाह होता है, यदुवंशों में ऐसा होता है, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये उचित है इस प्रकार का विवाह। ठीक है। आपका प्रश्न? असुरों में और जानवरों में दानवों में, असुरों में दानवों में, ऐसा है कि असुर जो शब्द है ये तो सीधा जो भगवान के विरोधी हैं उनको असुर कहते हैं, तो असुर कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, किसी भी वंश में पैदा हुआ। दैत्य जो है ये जो शब्द है ये इसका मतलब असुर नहीं होता है, दैत्य का मतलब है दिति के वंश में जो पैदा हुए वो दैत्य कहलाए। आदित्य ये भी जो है देवताओं के लिए नहीं है बल्कि ये तो अदिति के वंश में जो पैदा हुए वो आदित्य है। लेकिन फिर एक घटना ऐसी हो गई कि दिति से गलती हो गई कि जिसके कारण जो है मतलब वो असुर पैदा हो गए, तो वो दैत्य थे तो वो असुर हुए, इसलिए अब दैत्य और असुर दोनों एक मतलब समानार्थक माने जाते हैं, दैत्य का मतलब असुर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई दैत्य हो तो वो असुर ही हो, जैसे प्रहलाद जी हैं दैत्य हैं लेकिन असुर नहीं है, है ना, बहुत बड़े भक्त हैं। बलि महाराज भी जो दैत्य हैं लेकिन असुर नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। और जो दानव दनु के वंश में पैदा हुए वो दानव, दनु ने भी कुछ गलती की होगी जिससे कि उसके जो पुत्र है वो आसुर स्वभाव के हुए, तो दानवों को भी जो है मतलब असुर माना जाता है। लेकिन वास्तव में दानव शब्द का मतलब असुर नहीं है, दानव शब्द का मतलब है जो दनु की संतान या दनु के वंश में जो पैदा हुए, ठीक है ना। आपका प्रश्न है पितृलोक में, इनका प्रश्न है कि पितृलोक में कौन लोग रहते हैं। पितृलोक जो है एक ऐसा लोक है कि जिसमें कुछ पुण्यात्मा लोग होते हैं जो कि अपने वंश में बहुत आसक्त रहते हैं, अपने वंश में बहुत आसक्त रहते हैं, तो वो जो है पितृलोक में जाते हैं। तो पितृलोक में जो उनके वंश के में आगे जो वंश में जो जो पैदा होते हैं वो जब करते हैं पिंडदान करते हैं तर्पण करते हैं तब उनको जो है तृप्ति प्राप्त होती है। तो पितरों का जो जीवन है वो फिर बड़े खतरे में रहता है कि आगे चलकर अगर उनके वंश में कोई उचित व्यक्ति अगर ना पैदा हुआ और उसने अगर वो विधि का पालन नहीं किया तो फिर उनको जो है बड़ी परेशानी होगी, उनको तृप्ति नहीं प्राप्त होगी। लेकिन वैसे पितृलोक में उनको कई प्रकार के भोग तो प्राप्त होते हैं, वो है तो पुण्यात्मा लोग, लेकिन बस यही है कि पुण्यात्मा भी अलग साथ साथ उनका कुछ दोष भी होता है, तो मिश्रित है ये पितृयोनि में, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय।